नमस्कार भारत, आज है 17 मई दिन गुरुवार। सभी श्रोताओं को कुलदीप मिश्र का नमस्कार। कर्नाटक पर राज्यपाल के फैसले पर देर रात लगी सुप्रीम कोर्ट की अदालत, भाजपा को फौरी राहत, येदियुरप्पा लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ।
जो शपथ ग्रहण समारोह है वो स्थगित नहीं हुआ है, किंतु कल 10:30 बजे की सुनवाई रखी है कोर्ट ने और ये कहा है कि 15 मई की जो चिट्ठी येदियुरप्पा जी ने दी थी क्लेम करते हुए गवर्नमेंट फॉर्मेशन की, वो आप प्रोड्यूस करिए।
रमजान भर कश्मीर में चरमपंथियों के खिलाफ नहीं चलेगा सैन्य अभियान।
मेरे हिसाब से सही है, अगर मतलब कोई शहीद होता है या मतलब किसी को मार दिया जाता है यहाँ पे, तो हालात खराब होती है कश्मीर वैली में। यहाँ पे कॉलेजेस बंद होते हैं, स्टूडेंट सफर करते हैं यहाँ पे।
और दुनिया जहान में आज बात भारत नेपाल रिश्तों की, अखबारों की समीक्षा भी होगी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिनेश उप्रेति से। कर्नाटक में सरकार बनाने को लेकर चल रही खींचतान पर सुप्रीम कोर्ट में देर रात ऐतिहासिक सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बीएस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के राज्यपाल के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। येदियुरप्पा आज बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वो पत्र भी मांगे हैं जो येदियुरप्पा ने सरकार बनाने का दावा पेश करते हुए राज्यपाल को सौंपे थे। इस मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को 10:30 बजे होगी। इससे पहले कर्नाटक के राज्यपाल वजूभाई वाला ने कल येदियुरप्पा को सरकार बनाने का न्योता दिया था। कांग्रेस ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्यपाल ने संविधान का एनकाउंटर कर डाला है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा,
आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री अमित शाह के हस्तक्षेप से कर्नाटक के गवर्नर वाजूभाई वाला जी ने कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर कर डाला, संविधान की धज्जियां उड़ा डाली, कानून को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, न्याय और निष्पक्षता उन दोनों की धज्जियां उड़ा दी। वो सरकार के पास न बहुमत है न जनमत है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें ये तो नहीं पता कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के साथ उनकी तय मुलाकात होगी कि नहीं, लेकिन वो अब भी इसे लेकर आशान्वित हैं। उत्तर कोरिया ने अमेरिका के साथ होने वाली बहुप्रतीक्षित बैठक को रद्द करने की धमकी दी है और कहा है कि वह ट्रंप के साथ होने वाली बैठक पर पुनर्विचार करेगा। यह बैठक 12 जून को सिंगापुर में होने वाली है। वॉशिंगटन में एक पत्रकार ने जब ट्रंप से ये पूछा कि ये बैठक अब होगी कि नहीं, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा,
We haven't seen anything, we haven't heard anything, we will see what happens.
हमें देखना होगा, हमें अभी इस बारे में पता नहीं है, हमने अभी तक कुछ नहीं सुना है, हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। ये थे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच प्रस्तावित बैठक की प्रशंसा करते हुए कहा है कि वह चाहते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप उन्हें भी बातचीत का न्योता दें। निकोलस मादुरो फिर से राष्ट्रपति चुने जाने के लिए चुनाव मैदान में हैं। मतदान रविवार को होना है। उन्होंने अमरीका से उनके देश के प्रति आक्रामक रुख छोड़ने की भी अपील की। राष्ट्रपति ट्रंप ने मादुरो को तानाशाह बताया था और उन्होंने मादुरो और वेनेजुएला के अन्य अधिकारियों पर कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए कुछ पाबंदियां भी लगाई हैं। मलेशिया की पुलिस ने पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक के घर की तलाशी ली है। रजाक के वकील हरपाल सिंह ग्रेवाल ने बताया कि पुलिस ने हवाला मामले की जाँच के सिलसिले में ये तलाशी ली है। उन्होंने दावा किया कि पुलिस को तलाशी में कुछ भी गैरकानूनी नहीं मिला और उन्हें नहीं लगता कि पुलिस पूर्व प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करेगी। इसराइल की सेना ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें फलिस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास का एक सदस्य यह कहते हुए दिख रहा है कि सोमवार को गजा में मारे गए 50 फलिस्तीनी हमास के सदस्य थे। इसराइली प्रधानमंत्री के प्रवक्ता ने कहा कि इससे ये साबित होता है कि ये हिंसक प्रदर्शन हमास का था। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। यूरोपियन यूनियन के नेता ईरान के साथ 2 साल पहले हुए परमाणु समझौते को जारी रखने पर सहमत हो गए हैं। बुल्गारिया में हुई बैठक के बाद यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि ईरान के साथ उनका आर्थिक सहयोग जारी रहेगा। यूरोपियन यूनियन ने यह फैसला अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस कदम के बाद उठाया है जिसमें उन्होंने ईरान के साथ परमाणु समझौता तोड़ दिया था। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा नमस्कार भारत। रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी लाइव, और मैं हूं कुलदीप मिश्र। सुप्रीम कोर्ट में बीती रात चली ऐतिहासिक सुनवाई के बाद ये साफ हो गया कि बीएस येदियुरप्पा आज कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वो भी गुरुवार था और ये भी गुरुवार है। देश के इतिहास में दूसरी बार ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे विशेष सुनवाई के लिए आधी रात के बाद खोले गए। पहली बार इसकी वजह थी चरमपंथी याकूब मेमन की फांसी की सजा के खिलाफ अर्जी, और कल लगभग 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक में राज्यपाल के फैसले के खिलाफ कांग्रेस और जनता दल सेकुलर की अर्जी पर सुनवाई हुई। अदालत की सुनवाई के बाद कांग्रेस जेडीएस के वकीलों में से एक ने बाहर आकर ये बताया,
जो शपथ ग्रहण समारोह है वो स्थगित नहीं हुआ है, किंतु कल 10:30 बजे की सुनवाई रखी है कोर्ट ने, और ये कहा है कि 15 मई की जो चिट्ठी येदियुरप्पा जी ने दी थी क्लेम करते हुए गवर्नमेंट फॉर्मेशन की, वो आप प्रोड्यूस करिए, उसके ऊपर निर्भर करता है। हो सकता है कि येदियुरप्पा जी की शपथ ग्रहण के बाद उनको पदमुक्त भी किया जा सकता है।
दरअसल कर्नाटक में किसी को बहुमत न मिलने पर कल रात राज्यपाल वजुभाई वाला ने सबसे बड़े लेकिन बहुमत से चूक गए दल भाजपा को सरकार बनाने का न्योता दिया। भाजपा ने ऐलान भी कर दिया कि सुबह 9 बजे बीएस येदियुरप्पा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर ने इस फैसले को असंवैधानिक बताया और सुप्रीम कोर्ट से आधी रात के बाद ही सुनवाई का निवेदन किया, जिसे शीर्ष कोर्ट ने मान भी लिया। इसके बाद निगाहें कर्नाटक से दिल्ली में आकर ठहर गईं। बीती रात क्या क्या हुआ, ज़्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं बीबीसी हिंदी सेवा के संपादक मुकेश शर्मा के पास, जो टेलीफोन के जरिए दिल्ली से ही कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। मुकेश जी, कर्नाटक में सरकार गठन की गाड़ी जो 2 दिनों से लगभग अटकी हुई थी, कल कुछ आगे तो बढ़ी, अगर आप कुछ विस्तार से बता सकें कि क्या क्या हुआ देर रात।
जी, गाड़ी आगे बढ़ी और कर्नाटक में आगे बढ़ी, लेकिन जो पूरी सियासी गहमा गहमी कर्नाटक में सिमटी हुई थी वो रातों कल देर रात उतर आई नई दिल्ली में। और दिल्ली में हुआ ये कि देर रात कांग्रेस को जब ये पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी को गवर्नर ने इनवाइट किया है, आमंत्रित किया है सरकार बनाने के लिए, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कांग्रेस ने देर रात एक याचिका दायर की जिसमें उन्होंने जो राज्यपाल का फैसला है उसको चुनौती दी। रजिस्ट्रार महोदय आधी रात के लगभग मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के घर पहुंचते हैं। दीपक मिश्रा के घर से उसके बाद में ये खबर आई कि उन्होंने 3 न्यायाधीशों की एक खंडपीठ का गठन किया, जस्टिस ए के सीकरी, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े। और ये तय हुआ कि रात के 2:45 बजे, ऐतिहासिक जैसा आपने स्वयं कहा दूसरी बार, रात के 2:45 बजे ये सुनवाई शुरू होगी। कांग्रेस की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी शामिल हुए, और उसके अलावा जो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, और भारतीय जनता पार्टी की ओर के कुछ विधायकों की ओर से मुकुल रोहतगी शामिल हुए। कुल मिला के 2-3 चीजें थी जिसके ऊपर चर्चा होनी थी। सबसे पहली बात यह थी कि क्या जो फैसला लिया है गवर्नर ने, राज्यपाल महोदय ने, वो असंवैधानिक है, और ये भी बात कही जा रही थी कि जो 15 दिन का समय दिया गया है बीएस येदियुरप्पा को अपनी सरकार बनाने के लिए, उसको कम किया जाए। जैसा पिछली बार जब गोवा में सरकार बनी थी तो भी ये कहा गया था कि वो 48 घंटे का समय सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद कर दिया गया था। उच्चतम न्यायालय ने फिलहाल ये कहा है कि येदियुरप्पा आज शपथ ले सकते हैं, लेकिन अभी ये याचिका जो है वो खारिज नहीं हुई है। अभी अगली सुनवाई कल सुबह 10:30 बजे होगी और उसके नतीजे के ऊपर तय होगा कि ये जो शपथ हो रही है इसका आगे क्या होना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो अपना समर्थन का पत्र राज्यपाल महोदय को सौंपा गया था वो वापस कल कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए, तो जो सुप्रीम कोर्ट में वो पेश किया जाएगा उसके बाद ये सुनवाई आगे चलेगी। और साथ ही साथ कांग्रेस ये भी चाहती है कि अगर किसी भी तरह, मान लीजिए ये भी कहती है सर्वोमय जजमेंट के तहत सुप्रीम कोर्ट की साफ जो सदन का पटल है उसी के ऊपर तय किया जा सकता है कि बहुमत किसके पास है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार की ओर से यही कहा जाएगा कि बहुमत किसके पास है, न तो राजभवन में तय हो सकता है न अदालत में, तो उसके ऊपर भी जो 15 दिन का समय है उस पर दोबारा एक बार खींचतान होगी।
चलिए, बहुत शुक्रिया मुकेश शर्मा से। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने से पहले जनता दल सेक्युलर के नेता दानिश अली ने दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, वो भी सुनिए।
We have 117 MLAs. We wanted to parade in front of governor.
कुमार
स्वामी की रात की नींद गायब नहीं, रात की नींद बीजेपी के लीडरों की गायब हुई है। ये तो इंसाफ का न्यायालय है ना, ये रात के 2 बजे ऐसे ही नहीं खुला है। 57% लोगों ने जो है जेडीएस कांग्रेस और बीएसपी अलायंस को वोट दिया है। व्हाट यू आर टॉकिंग,
सो वेयर डू यू थिंक बीजेपी इज गोना गेट इट्स नंबर फ्रॉम द स्टार एट 104 राइट नाउ?
बीजेपी विल गेट दिस नंबर फ्रॉम द हेवन।
भाजपा बहुमत का आंकड़ा जन्नत से लाएगी, ये कह रहे थे जेडीएस नेता दानिश अली। हालांकि शुक्रवार तक तो भाजपा को फौरी राहत मिल गई है और येदियुरप्पा आज शपथ लेंगे और फिलहाल आज मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अब सीधे चलते हैं बेंगलुरु, जहां मौजूद हैं हमारे संवाददाता नितिन श्रीवास्तव। नितिन, कर्नाटक की वजह से कल दिल्ली में गहमी रही, कुछ वकील, कुछ पत्रकार, कुछ नेता पूरी रात जागते रहे, लेकिन कर्नाटक में शपथ ग्रहण की आज क्या तैयारियां हैं?
कर्नाटक में हाल ये है कुलदीप कि अभी सुबह 7:30 बजे से बहुत जबरदस्त बैरिकेडिंग होने वाली है जो राजभवन है बेंगलुरु में उसके सामने, और खुद येदियुरप्पा ने कल रात को ट्वीट किया है कि मुझे सबका समर्थन, सबकी प्रार्थनाएं चाहिए क्योंकि मैं 9 बजे राजभवन में जा रहा हूँ शपथ ग्रहण के लिए। उसके बाद अभी 1 घंटा पहले बीजेपी कर्नाटका की तरफ से एक और ट्वीट आया है, उसमें लिखा है कि गुड मॉर्निंग कर्नाटका, कुछ ही घंटों में येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण दिलाई जाएगी, और ये गोल्डन चैप्टर बता रहे हैं बीजेपी कर्नाटका यूनिट यहाँ पर। लेकिन जो मंजर है यहाँ पर और जो सीन है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक सारे बेंगलुरु में हैं। कल उनकी एक तरह से उनको मीडिया के सामने हाजिर किया गया था, हम लोग मौजूद थे बीजेपी के मल्लेश्वरम दफ्तर में। कांग्रेस के जो विधायक हैं, जो नए नवनिर्वाचित विधायक हैं कर्नाटक के, वो सारे ईगल्टन रिजॉर्ट में हैं, जो यहाँ से बेंगलुरु और मैसूर के बीच में एक जगह है जहां पर पहले भी विधायक जा चुके हैं एक बार। जो जनता दल एस के विधायक हैं, उनको सबको एक 5 सितारा होटल है जहां पर अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, इससे कोई 2 किलोमीटर की दूरी पर, वहां पर सुरक्षित एक तरह से महफूज एक तरह से रखा गया है। ये हालात है कर्नाटक में। लेकिन आज जब ये 9 बजे अगर ये शपथ ग्रहण हो रही है जैसा सब लोग बता रहे हैं और खुद येदियुरप्पा और राज्यपाल ने इनवाइट किया है, उसके बाद यहाँ पर राजनीति फिर से निश्चित तौर पर गर्माएगी।
बहुत शुक्रिया नितिन श्रीवास्तव, हमसे जुड़े थे सीधे बेंगलुरु से। और अब वक्त है अखबारों की समीक्षा का। दिनेश उप्रेती मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। दिनेश, कर्नाटक की खबर का ये ताज़ा अपडेट, ताज़ा हाल तो आज के अखबारों में नहीं होगा क्योंकि बीती रात चीज़ें होती नहीं, लेकिन इसके अलावा भी आज क्या कुछ है अखबारों में?
जी, आपने सही कहा कि ताज़ा हाल तो नहीं है, लेकिन कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा का शपथ ग्रहण रोकने के लिए कांग्रेस देर रात सुप्रीम कोर्ट पहुंची, ये खबर लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस ने बनारस में जो फ्लाईओवर हादसा हुआ था उसके लिए, उस पर एक खबर दी है कि जिस फ्लाईओवर का हिस्सा गिरा था उसे बनाने वाली कंपनी को उत्तर प्रदेश पुलिस ने 5 चेतावनी पत्र भेजे थे, लेकिन उन्होंने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया। पुलिस का ये भी दावा है कि पिछले साल नवंबर के बाद उसने कम से कम 5 चेतावनी पत्र उसे भेजे, और इसमें कहा गया था कि निर्माण के दौरान यातायात सुरक्षा नियमों का पालन किया जाए। इसी मुद्दे पर पुलिस ने निगम के खिलाफ FIR भी दर्ज की थी,
और कल इसी मसले पर डिप्टी सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि 4 अधिकारियों को प्रथम दृष्टया लापरवाही के आरोप में निलंबित
कर दिया गया है। इसके अलावा रमजान के दौरान घाटी में सैन्य अभियान पर रोक, ये खबर भी कई अखबारों के पहले पन्ने पर है। केंद्र सरकार ने बुधवार को सुरक्षा बलों को निर्देश दिया कि वे रमजान के पवित्र महीने में जम्मू कश्मीर में कोई सैन्य अभियान नहीं चलाए। हालांकि नवभारत टाइम्स ने इसी पे इस खबर को इस तरह दिया कि इधर केंद्र ने कहा रमजान में बंदूकें बंद रहेंगी, उधर सुरक्षा बलों पर अटैक हुआ।
एक खबर जनसत्ता में मैं देख रहा हूँ सबसे नीचे कि फेसबुक पर 58 करोड़ से ज़्यादा फर्जी अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। 2018 के पहले 3 महीने में 58.3 करोड़ फर्जी अकाउंट बंद कर दिए गए हैं, और भड़काऊ हिंसक चित्र, चरमपंथी दुष्प्रचार और घृणा फैलाने का आरोप इन अकाउंट पर था।
इसमें एक और दिलचस्प जानकारी ये है कि जो जो सबसे ज़्यादा शिकायतें मिली थी वो अमेरिका से मिली थी, और उसके बाद में दूसरे नंबर पे उसका भारत का।
चलिए, कैम्ब्रिज एनालिटिका डेटा कांड के बाद जो पारदर्शिता को लेकर के सवाल उठे हैं फेसबुक पर, उसके बाद ये किस्म का डैमेज कंट्रोल हो सकता है। बहुत शुक्रिया दिनेश उप्रेती अखबारों की समीक्षा के लिए।
खबर सच है अगर BBC पर है।
केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों से रमजान के दौरान कोई ऑपरेशन शुरू न करने का आदेश दिया है। गृह मंत्रालय का कहना है कि इससे रमजान के महीने में एक अच्छा माहौल मुहैया कराने में मदद मिलेगी। हालांकि सुरक्षा बलों को हमले की स्थिति में पलटवार का अधिकार होगा। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने केंद्र के इस फैसले का स्वागत किया है। श्रीनगर से रियाज मसरूर की रिपोर्ट सुनिए।
इस घोषणा के तुरंत बाद मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह का शुक्रिया किया और सभी वर्गों से अपील की कि सीज फायर को सफल बनाएं।
और उम्मीद करती हूं कि जो पाकिस्तान है वो भी इस सीज फायर का मुस्बत जवाब देंगे, ताकि जो यहां मिलिटेंट्स हैं उनकी तरफ से भी माह रमजान की जो है मुबारक जो मौका है उसका एहतराम करते हुए वो भी इस सीज फायर का मुस्बत जो है रिस्पॉन्स देंगे। और ये जो खून खराबा जम्मू कश्मीर में पिछले कई सालों से हो रहा है, इस खून खराबे को बंद करने में ये सीज फायर का आरामद होगा।
पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी ट्विटर पर इस घोषणा का स्वागत किया है और चरमपंथियों से कहा है कि अगर उन्होंने इसके जवाब में सीज फायर नहीं किया तो वो एक्सपोज हो जाएंगे। आम लोगों का ख्याल है कि सीज फायर समस्या का समाधान नहीं बल्कि समाधान की तरफ एक कदम है।
सबसे बड़ी चीज कहीं एनकाउंटर स्टार्ट होता है, नेट बंद हो जाता है। मतलब नेट बंद हो गया तो हमें ज्यादातर आज लोग ये नेट से पढ़ते हैं वगैरह, तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। और दोस्तों से पेरेंट्स से कांटेक्ट भी कम होता है। किसी के पेरेंट्स कहीं दूसरे स्टेट में होते हैं, वो कांटेक्ट करते हैं, अब कांटेक्ट नहीं हो पाता है।
रमज़ान के महीने में उन्होंने कहा है कि ये सीज़ फायर जो है ये महदूद रहेगा, सिर्फ जो है ऑपरेशंस नहीं होंगे। ऐसा तो नहीं है कि कहीं पर स्टोन पेल्टिंग होती है तो उसको उस पर कार्रवाई नहीं होगी, या कहीं पर जंगू जून की तरफ से हमला होगा उसके जवाब में हमला नहीं होगा, ऐसा क्लियर नहीं है। हमें जो अभी पता चल रहा है वो सिर्फ इतना है कि उन्होंने कहा है कि हम फौज ऑपरेशंस नहीं करेगी।
मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि अगर सीज़ फायर हुआ है यहाँ कश्मीर वैली में तो अगर मतलब कोई शहीद होता है या मतलब किसी को मार दिया जाता है यहाँ पे, तो हालात ख़राब होती है कश्मीर वैली में। तो यहाँ पे कॉलेजेस बंद होते हैं, स्टूडेंट मतलब सफ़र करते हैं यहाँ पे, तो इस हिसाब से मेरे को लगता है कि ये कई हद तक ठीक है।
गौरतलब है कई वर्ष से कश्मीर में चरमपंथियों की गतिविधियां बढ़ गई हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले कई युवा चरमपंथी गुटों में शामिल हो रहे हैं। मुठभेड़ों की जगह के निकट प्रदर्शन होते हैं और इसमें लोग मारे जाते हैं। पिछले दिनों शोपियां में एनकाउंटर की जगह लोगों के प्रदर्शन के कारण हालात बिगड़ गए और फोर्सेज की कार्रवाई में कई आम नागरिक मारे गए। इसके बाद मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और बाद में केंद्र सरकार के सामने रमजान में सीज फायर का प्रस्ताव रखा। एक हफ्ते बाद कल दोपहर गृह मंत्रालय ने सीज फायर की घोषणा की और साथ ही कहा कि अगर फोर्सेस पर हमला किया गया तो इन्हें जवाबी कार्रवाई का अधिकार होगा। रियाज मसरूर, BBC श्रीनगर।
विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह उत्तर कोरिया के 2 दिवसीय दौरे पर 15 मई को पहुंचे हैं। पिछले 20 सालों में किसी भारतीय मंत्री का उत्तर कोरिया का ये पहला दौरा है। एक साल पहले तक भारत पर उत्तर कोरिया से व्यापारिक रिश्ते कम करने का दबाव था। अब जब अमेरिका और दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया से बात कर रहे हैं तो क्या भारत ने भी बदले माहौल को भांपते हुए ये कदम उठाया है? BBC संवाददाता रजनीश कुमार ने यही सवाल पूछा JNU में कोरियाई अध्ययन केंद्र की प्रोफेसर वैजयंती राघवन से।
कुछ सालों तक के तो हमारी संबंध नहीं रही है नॉर्थ कोरिया के साथ। शुरू शुरू में जब हम नॉन अलाइंट थे तब तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों के साथ हमारे संबंध अच्छे थे। नॉन अलाइंट के रूप में तो दोनों के साथ हमारा वो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप भी है। फिर बीच में जब नॉर्थ कोरिया का संबंध पाकिस्तान और चीन के साथ परमाणु के विषय में होने लगा तब हमारे संबंध थोड़े कम हो गए थे। अब फिर साउथ कोरिया के साथ संबंध अच्छे हुए तो फिर साउथ कोरिया की पक्ष हम लेने लगे और नॉर्थ कोरिया के करतूतों के बारे में फिर हमने उनको बुरा भला भी कहा है। अब अचानक इनका जाना इट्स अ न्यू स्टैंड। शायद अमेरिका के साथ हमारे संबंध अब अच्छे हैं और साउथ कोरिया के साथ भी, तो उनसे कुछ इशारा शायद मिला होगा कि हमारा रिश्ता नॉर्थ कोरिया के साथ है। तो शायद अमेरिका ने कहा होगा कि नॉर्थ कोरिया को जाके समझाएं कि नॉर्थ कोरिया अमेरिका के साथ मिलने वाला था और हाल ही में ये धमकी दिए हैं कि शायद ये रद्द भी किया जा सकता है, तो इस सिलसिले में कुछ इंडिया मदद करें।
उत्तर कोरिया के जिस तरह से संबंध चीन और पाकिस्तान से हैं, ऐसे में भारत का जो द्विपक्षीय संबंध है उत्तर कोरिया के साथ वो ट्रेड के लेवल पे तो व्यापार के लेवल पर तो रहा है, लेकिन क्या इससे आगे वो संबंध बढ़ेगा?
देखिए, अब नॉर्थ कोरिया के विषय में कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन माहौल जिस तरीके से बदल रहा है, मेरी ये समझ है कि नॉर्थ कोरिया ने तो अपना सारा परमाणु जो न्यूक्लियर वेपन्स थे, मिसाइल थे, सारा टेस्ट कर लिया है। उन्हें ये आश्वासन हो गया है कि उनके पास सब है। अब वो शायद आर्थिक व्यवस्था की तरफ उनका ध्यान जाएगा जरूर।
भारत अगर उत्तर कोरिया से संबंधों को गहरा करता है तो इससे उसको क्या फायदा मिल सकता है?
नहीं, काफी कुछ उनके पास रॉ मटेरियल्स बहुत हैं और वो यही होगा कि के जरिए वो उनपे दबाव भी डाल सकते हैं कि आप पाकिस्तान और चीन के साथ जो न्यूक्लियर वेपन्स की ट्रेड वगैरह हो रहे हैं उसे कम करिएगा, हम भी आपके मदद कर सकते हैं।
प्रोफेसर वैजयंती राघवन को सुन रहे थे आप। आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में पड़ोसी देश नेपाल की यात्रा पर गए थे। दो दिन के इस दौरे में उन्होंने भारत और नेपाल के प्राचीन सामाजिक और सांस्कृतिक रिश्तों पर जोर दिया। ये बात छिपी नहीं है कि 2015 की आर्थिक नाकेबंदी के बाद नेपाल और भारत के रिश्तों में एक खिंचाव सा आ गया है। क्या कारण है कि नेपाल और अन्य पड़ोसी मुल्कों के बीच भारत का ओहदा पहले जैसा नहीं रहा और क्या इस तरह की यात्राएं दक्षिण एशियाई देशों और खासकर नेपाल के साथ भारत के संबंधों में किसी किस्म की मिठास ला पाएंगी? इस बार दुनिया जहान में आदर्श राठौड़ ने इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की।
दुनिया जहां,
जिस प्रकार पर्वतारोहियों को नेपाल के शेरपाओं का मजबूत साथ और समर्थन मिलता है, उसी प्रकार नेपाल की इस विकास यात्रा में भारत आपके लिए शेरपा का काम करने के लिए तैयार।
ये शब्द हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जो उन्होंने हाल ही में नेपाल यात्रा के दौरान काठमांडू में कहे। दो दिन की यात्रा के दौरान वो नेपाल के जानकी मंदिर, मुक्तिनाथ मंदिर और पशुपतिनाथ मंदिर भी गए। जानकी मंदिर में तो उन्होंने भजन कीर्तन कर रहे लोगों के साथ मंजीरा भी बजाया। इस यात्रा के दौरान इस तरह की चर्चा सुनाई दी कि नरेंद्र मोदी का यह दौरा सांस्कृतिक था, लेकिन क्या वाकई ऐसा था? नेपाल के वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे बताते हैं कि इस यात्रा के जरिए नरेंद्र मोदी ने अपनी छवि सुधारने की भी कोशिश की और भारत नेपाल रिश्तों को बेहतर करने का भी प्रयास किया।
नेपाल में जो 2 साल पहले की इकोनॉमिक ब्लॉकेड था, उसके बाद से नेपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इमेज पर काफी गिरावट आ गया था। मुझे लगता है कि पहला उनका मकसद ये था उस इमेज को, पर्सनल इमेज को नेपाल में थोड़ा लोकप्रियता दी। दूसरा, एक जो आलोचना मोदी सरकार का हो रहा है कि दक्षिण एशिया के सभी पड़ोसी मुल्क भी, वो सभी मुल्क चाइना के नजदीक हो रहे, उनको वापस किसी तरह इंडिया के साथ नजदीक लाने की कोशिश है।
लेकिन सवाल उठता है कि नेपाल के साथ भारत के रिश्ते इतने खराब कैसे हो गए, जो भारतीय प्रधानमंत्री को बार बार भारत और नेपाल के पुराने और ऐतिहासिक संबंधों की याद दिलानी पड़ी।
और राजा दशरथ ने सिर्फ जनकपुर और अयोध्या को ही नहीं, भारत और नेपाल को भी मित्रता और साझेदारी के बंधन में बांध दिया था।
नेपाल मामलों के जानकार आनंद स्वरूप वर्मा बताते हैं कि इसके लिए भारत की भी कुछ गलतियां जिम्मेदार हैं।
अब देखिए, नेपाल तीन तरफ से भारत से घिरा हुआ है। अच्छा, एक तरफ से चीन से घिरा है और चीन का जो रास्ता है वो बहुत दुर्गम है, ये भारत भी जानता है और नेपाल के शासक भी इसको जानते हैं। अगर भारत से उसको दिक्कत पैदा होती है तो निश्चित तौर से वह चीन की तरफ मुखातिब होगा और यही हुआ था। नाकाबंदी के 20 दिन बाद चीन की तरफ उसने हाथ बढ़ाया पेट्रोल के लिए। उस समय ओली की सरकार थी, जो आज भी प्रधानमंत्री हैं, ओली को ये पता था कि भारत का विकल्प कभी चीन नहीं हो सकता, लेकिन चीन के साथ भी अगर वो मदद ना मांगे तब तो वहाँ की जनता भूखों मर जाती और निश्चित तौर से चीन के लिए तो एक अच्छा अवसर था।
नेपाल के वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे भी मानते हैं कि 2015 की आर्थिक नाकेबंदी के बाद से नेपाल को विचार करना पड़ा है कि फिर वैसी नौबत आने पर एक विकल्प तो होना ही चाहिए।
स्पेशली नाकेबंदी के बाद नेपाल ने लगी थी कि इंडिया के साथ ही केवल ट्रेड और ट्रांजिट के लिए डिपेंड करना मुश्किल है। इस तरह की सिचुएशन आने पर हमको वैकल्पिक मार्ग मिलता है। उस हिसाब से नेपाल की जनता खुश है और इसमें चाहे वही सरकार हो चाहे दूसरा कोई सरकार हो, वो सरकार को समर्थन उन्होंने किया है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में नेपाल सबसे पहले आता है, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार आनंद स्वरूप वर्मा बताते हैं कि भारत के शासक वर्ग की औपनिवेशिक मानसिकता के कारण ही पड़ोसी देशों से उसके रिश्ते अच्छे नहीं।
ऐसा नहीं है कि भूटान के साथ बहुत अच्छे संबंध जो दिखाई देते हैं, ये संबंध भूटान की मजबूरी की वजह से है। भूटान इस सीमा तक इनके एट पर निर्भर है कि वह चाहते हुए बहुत चीजों पर विरोध नहीं कर पाता है, लेकिन भूटान की जनता इसको अच्छी तरह महसूस करती है और बाकी सारे देशों के साथ इनके संबंध वैसे ही हैं।
भूटान ही नहीं, नेपाल में भी इस बात को लेकर चिंता रहती है कि भारत उसके आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है। नेपाल के वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे बताते हैं कि आखिर नेपाल में भारत की किस बात को लेकर नाराजगी है।
देखिए, नेपाल की जनता मतलब यह गरीबी हो सकता है, पिछड़ापन हो सकता है, लेकिन वो अपने जो स्वतंत्र हैसियत रहा है, कभी किसी का उपनिवेश न बनाए, उसमें गर्व करता है एक साधारण नेपाली भी। और उस चीज को जब तक कोई मुल्क या इंडिया हो और कोई मुल्क एक थोड़ा अंडरमाइन करते हैं तो यहाँ वो आक्रोश आता है। खासतौर से 2006 के बाद इंडिया ने नेपाल के आंतरिक राजनीति में जिस तरह से संलग्न होने की कोशिश कर रहा है रेडिकल एजेंडा के साथ, इस तरह का फीलिंग है।
भारत नेपाल और भूटान जैसे पड़ोसी देशों का भरोसा और दिल किस तरह से जीत सकता है, इस सवाल के जवाब में वरिष्ठ पत्रकार आनंद स्वरूप वर्मा बताते हैं कि इसके लिए जरूरी है कि पड़ोसी देशों की संप्रभुता का सम्मान किया जाए।
मेरा ये मानना है कि भारत कुछ न करे, कम से कम उन पड़ोसियों ये नेपाल की जनता के प्रति एक सम्मान का प्रदर्शन करें। हम भारत के लोग जो हैं, हमारी संप्रभुता नेपाल के या भूटान के छोटे देश के लोगों के संप्रभुता से बड़ी है, यह भावना अगर हम दिमाग से निकाल देंगे तब निश्चित तौर से नेपाली जनता के साथ एक सद्भावपूर्ण संबंध कायम हो सकेगा।
और शायद यही कारण है कि काठमांडू में प्रधानमंत्री को जोर देकर कहना पड़ा कि भारत नेपाल का सहयोग तो करेगा मगर नेपाल की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं पर।
ये मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, नेपाल अपनी प्राथमिकता और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार आगे बढ़े। आपकी सफलता के लिए भारत हमेशा नेपाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा।
वरिष्ठ पत्रकार युवराज मानते हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल की यात्रा की, उस तरह की यात्राओं से सकारात्मक माहौल तो बनता है, लेकिन असल मुद्दों पर बात करना भी जरूरी है। जानकारों का मानना है कि भारत अपने पड़ोसी देशों का भरोसा तभी जीत सकता है जब वो उनसे किए गए वादों को पूरा करे और उन देशों को उसी रूप में स्वीकार करे जैसे वे हैं, यानी स्वतंत्र और संप्रभु पड़ोसी राष्ट्र, और यही उसकी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का आधार होना चाहिए।
कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर सुनिए दिनेश उप्रेती से।
बीबीसी समाचार। कर्नाटक में सरकार बनाने को लेकर चल रही खींचतान पर सुप्रीम कोर्ट में देर रात हुई ऐतिहासिक सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बीएस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के राज्यपाल के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। येदियुरप्पा आज बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें ये तो नहीं पता कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के साथ उनकी तय मुलाकात होगी कि नहीं, लेकिन अब भी उन्हें इसकी उम्मीद है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अमरीका और उत्तर कोरिया के बीच प्रस्तावित बैठक की प्रशंसा करते हुए कहा है कि वह चाहते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप उन्हें भी बातचीत का न्योता दें। मलेशिया की पुलिस ने पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक के घर की तलाशी ली है। यूरोपियन यूनियन के नेता ईरान के साथ 2 साल पहले हुए परमाणु समझौते को जारी रखने पर सहमत हो गए हैं। बीबीसी समाचार।
इसी के साथ नमस्कार भारत की सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाया देवाशीष ने और फेसबुक पर इसे आप तक पहुंचाया प्रशांत चहल ने। तो अब कुलदीप मिश्र को दीजिए अनुमति, पढ़ते रहिए हमारी वेबसाइट bbchindi.com। नमस्कार।